आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ शशि कुमार। गर्मी का मौसम आते ही कई लोग वजन घटाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। कोई डाइट बदलता है, कोई एक्सरसाइज बढ़ा देता है, तो कोई तुरंत नतीजों की उम्मीद करने लगता है। लेकिन क्या गर्मियों में वजन प्रबंधन के लिए ज्यादा मेहनत जरूरी है या सही तरीका अपनाना ज्यादा अहम? आयुर्वेद कहता है कि अगर हम मौसम के अनुसार खान पान और दिनचर्या अपनाएं तो शरीर खुद संतुलन में आने लगता है। तो गर्मियों में प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से अपने वजन को कैसे काबू में करें, इस बारे में जानने के लिए हमने बात की एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से, डॉक्टर नवीन शुक्ला, जो सिडनी में एक आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर चलाते हैं और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर नवीन शुक्ला जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी नमस्कार जी, शशि जी आपका भी धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया कि हम आयुर्वेदा के सिद्धांतों को आम जनता तक लेके जा सकें।
जी, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि गर्मियों में वजन घटाने में आयुर्वेद से क्या मदद मिल सकती है और हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
वजन को कम करना या वजन बढ़ाना, ये आयुर्वेदा में इसमें हम इसको कैलोरी के साथ नहीं मापते, ये एक संतुलन से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसमें हमारी पाचन शक्ति के अंदर हमारी पाचक अग्नि आती है, उसी तरह दिनचर्या, डेली रूटीन, हमारी निद्रा, तनाव जिसको स्ट्रेस भी बोल देते हैं, और भोजन की गुणवत्ता, क्या खाया जाता है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और पर्टिकुलरली आजकल जैसे हॉलीडेज चल रहे हैं, स्कूल हॉलीडेज, इसमें तो जैसा हमारा जीवन शैली हो चुकी है उसमें तो बहुत ही मुश्किल है कि वजन को कम करना। तो इस समय हमें क्योंकि उत्सव का तरह माहौल बना होता है तो भोजन अनियमित हो जाता है, खाना भारी हो जाता है, देर रात तक जागना, फिर तनाव होता है, ये सारे विषय हैं जिनको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमको वजन के ऊपर, अपने भार के ऊपर ध्यान देना है।
और आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर में क्या बदलाव आते हैं और इसका वजन पर क्या असर पड़ता है?
देखें, आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में क्या होता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर थोड़ी सी कम हो जाती है, पानी ज़्यादा पीते हैं, गर्मी बहुत होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में पसीना भी ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हमें ईजिली डाइजेस्टेबल फूड खाने होते हैं ताकि जो हमारी पाचक अग्नि कम है, थोड़ी डाउन होती है, तो उस जो इजीली हमारा भोजन पच सके। तो ये हमें गर्मियों में ये विषय बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हम लोग गर्मियों में ऑलरेडी अगर वेट लॉस करना है तो ऊपर से और कम खाना शुरू कर दो, ये नहीं चलेगा। कम से कम हमें अपने खाने की जो मात्रा है वो नियमित रखनी है, और खाना छोड़ना ही एक सोल्यूशन नहीं है। अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से हमें एक संतुलन बना के खाने के साथ और साथ में नियमित व्यायाम करने के साथ हमें कभी भी भार की समस्या नहीं आती। कुछ लोग जैसे अभी छुट्टियां आ गई हैं तो छुट्टियों में क्रैश डाइटिंग करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा जैसे इसी तरह किसी भी क्रैश डाइटिंग का समर्थन नहीं करता। आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि सही समय पर, सही मात्रा में और पचने वाला भोजन खाया जाए। जब पाचन अच्छा होता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से ही स्वस्थ वजन बनाए रखता है।
जी, और आयुर्वेद के अनुसार कौन से खाद्य पदार्थ है जो गर्मी में वजन बढ़ा सकते हैं या जिन्हें सीमित मात्रा में लोगों को लेना चाहिए?
देखें, अगर हम जर्नलाइज्ड वे से बात करें तो जब तक हम किसी को, क्योंकि आयुर्वेदा एक ऐसी पद्धति है, ये एक हर एक इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड है, हर किसी का गुण दोष अलग से देखा जाता है। तो इसमें अगर जनरलाइज्ड वे से देखा जाए तो हमें आयुर्वेदा में गर्म, ताज़ा और घर का भोजन ज़्यादा अच्छा रहता है, जबकि जिसकी डाइजेस्टिव फायर या मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो जितना हम बाहर का बना खाना खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव और बहुत सारे स्वाद को बढ़ाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। सबसे पहले हमें नेचर के साथ जुड़ना जरूरी है, और नेचर के साथ जुड़ने के लिए जो भोजन नेचर ने हमें कुदरती रूप से दिए हैं उसको एक्सेप्ट करना वो जरूरी है। इसलिए मौसम की सब्जियां खानी चाहिए, साबुत अनाज जैसे होते हैं, जैसे हम लोग ब्रोकन व्हीट होता है जैसे उसका दलिया बना के खाते हैं, और सब्जियों में जैसे अदरक, जीरा, धनिया, हल्दी, इन मसालों को पाचक अग्नि को मजबूत रखते हैं। लेकिन साथ में हम गर्मियों में समस्या ये होती है कि हम लोग ठंडा पानी पीने की आदत हो गई है, तो ये हमारी पाचक अग्नि को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। तो बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड, ज्यादा मीठा भोजन जो हमारी पाचन अग्नि को बिगाड़ता है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी सही है, और अगर स्वस्थ व्यक्ति ऊपर से अच्छे से व्यायाम करता है तो उसके लिए जो भी खाता है वो हजम होना इजी है। लेकिन जो बंदा जो जो मनुष्य ऑलरेडी वजन बढ़ रहा है, पाचक अग्नि कम है, मंदा अग्नि हुई पड़ी है, ऊपर से वो बहुत ठंडा भोजन खाता है, ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाता है, जैसे हमेशा ही पैकेट वाला फूड खोला और खा लिया, या बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा चॉकलेट का सेवन करता है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर सपोर्ट नहीं करता है।
और आयुर्वेद में ठंडे और गर्म भोजन की क्या अवधारणा है और इसका वजन नियंत्रण से कैसे संबंध है?
देखिए ऐसा है कि हमारा जो अमाशय है जिसको हम स्टमक बोलते हैं, उसमें भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे जो गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं उनमें एसिड्स होते हैं, तो वो सब ऊर्जा पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, भोजन को पचाने के लिए एसिड्स की जरूरत होती है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ठंडे भोजन अंदर डालते रहते हैं तो ये हमारे शरीर की जो नेचुरल क्रिया है उसको बाधित करते हैं, और अगर हम गर्म और ताजा भोजन खाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उष्णता बनी हुई है उसके हिसाब से, बहुत ज्यादा गर्म भोजन खाएंगे तो वो भी जीवा को जलाएगा, हमारे होंठों को जलाएगा। इसलिए सुखोषण भोजन खाने के साथ और ताजा भोजन खाने के साथ हमारी जो पाचक अग्नि है और डाइजेस्टिफायर है वो बैलेंस बनी रहती है, और जूस जो हमारा भोजन है उसमें से उतना जिसको बोलते हैं एक्सक्रीट कर लेती है जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हम खाते हैं। जो भी हम खाते हैं उसमें मोस्टली सारे मिनरल्स होते हैं, कम या ज्यादा। जब तक हमारी पाचक अग्नि ठीक है तो हमें किसी तरह की जरूरत नहीं होती कि हमें कोई स्पेशल मिनरल, स्पेशल विटामिन अपने अंदर डालने हैं। सबसे पहले हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना है और अपनी पाचक अग्नि ठीक करनी है, ताकि जो हम हर भोजन को ढंग से पचा सकें और उसमें से सारे मिनरल्स, सारे विटामिन अच्छे से एक्सक्रीट करके अपनी बॉडी को दे सकें।
जी, आयुर्वेद की मदद से किस तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाया जा सकता है, या अगर किसी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ हो तो कैसे उसे सुधारा जा सकता है?
जैसे आयुर्वेदा में कुछ एक थेरेपीज हैं, जैसे उद्वर्तनम जिसको बोलते हैं कि हम पाउडर के साथ मसाज करते हैं, वो अगेन हर एक पेशेंट के लिए, हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग पाउडर हमें चुनना होता है। उसके साथ हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, रक्त संचार, फिर अभ्यंगा है फुल बॉडी मसाज, उससे तनाव कम होता है और हमारे जो भोजन पचाने की शक्ति बढ़ती है। कभी कभी बीच में हमें संवेदन लेना चाहिए जिससे कि बॉडी की पूरी तरह से शुद्धि हो जाती है, जिसको हम डिटॉक्स बोलते हैं। अगर हम उद्वर्तनम या अभ्यंग करवाने के बाद संवेदन करते हैं, और वो भी अगर हम मेडिकेटेड संवेदन करते हैं, तो एक बहुत अच्छा शुद्धि होती है, डिटॉक्स होता है बॉडी का। ये सारा कुछ पर्सनलाइज्ड है, हर एक बंदे की अलग अलग समस्या होती है, उनके जिसको बोलते हैं दोषा को जो डिस्टर्बेंस है, इम्बैलेंस है, अलग अलग होता है। लेकिन सबसे बढ़िया इस समय जो मैंने पहले भी कहा, मौसम के फल, जो कि जानना बहुत मुश्किल है इस समय, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं हमें सब कुछ मिल रहा है, सर्दियों में भी हमें आम मिलते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें ये पता कर पाना कि कौन सा फल मौसम का है, तो हमें उसको सबसे ज्यादा खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो हमें दिखते तो हैं मार्केट में, सुपरमार्केट में पड़े हुए, तो हमें उन चीजों को थोड़ा माइंडफुल होके खाना चाहिए। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो जो भी खाद्य पदार्थ अगर इम्पोर्ट होके आ रहे हैं, जिसको इम्पोर्ट होने में 6 महीने लग रहे हैं, तो उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसके ट्रीटमेंट किए गए हैं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट करते करते उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, और जब वो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, पोर्ट के ऊपर आते हैं, तो उसको कई तरह की फ्यूमिगेशन मेथड से जाना पड़ता है। तो फ्यूमिगेशन मेथड में भी अलग अलग तरह की गैस होती है। क्या हमें यहाँ पे तादा मिल रहा है उसको हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि पर्टिकुलरली कौन सा फूड खाना चाहिए, ये तो बहुत बाद में आता है। पहले तो हमें ये देखना है कौन सी चीज हमें फ्रेश मिल रही है। जब वो खाना शुरू करोगे, उसके बाद स्टेप अगला आता है कि इनमें से भी आगे क्या खाना है।
और आयुर्वेदा के हिसाब से वजन को कंट्रोल करने के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
दिनचर्या एक बिल्कुल संतुलित दिनचर्या, जो कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है इस समय, क्योंकि कुछ लोग शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं। तो मैं फिर जो नियमित रूप से यह हमारा भोजन जो है वो नियमित होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपना भोजन जो है, जैसे जो अर्ली निकलते हैं तो अपना सुबह का भोजन ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। ये बहुत एक कॉमन है, बहुत ही आम तौर पे जितने भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनसे पूछते हैं, तो पहली बात यही होती है कि ब्रेकफास्ट तो करते ही नहीं है, कभी एक बनाना कर लिया, कभी नहीं किया, और कभी लंच के टाइम पे भी टेक अवे हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं खाया। तो ये सारी चीजें हमारी जो डाइजेस्टिव फायर के ऊपर असर करती हैं, ज्यादा देर पेट को खाली रखना, और जब हम नहीं खाते तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है कि उस समय कुछ ना कुछ फिर स्नैकिंग करते हैं, और स्नैकिंग जब हमारा डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है, या हम बीमार हैं, या स्ट्रेस में हैं, तो वो और भी पॉइजन की तरह काम करती हैं, क्योंकि वो भी एक नेचुरली नहीं बनी होती, उनको भी हमने अलग अलग तरह के तेल डाले गए हैं, जो ना तो हमें उनके अंदर डाले गए तेल का पता है कौन सा है, और उसमें और कौन कौन से मसाले डाले गए वो हमारे लिए अच्छे हैं नहीं है। इसलिए नियमित भोजन अगर हम घर से खाना शुरू कर देते हैं, सबसे पहला नियम तो ये है, चाहे थोड़ा खाओ चाहे ज्यादा खाओ, लेकिन भोजन अगर हम अपनी 3 ब्रेकफास्ट 8 बजे और दोपहर का समय जो लंच का है, जबकि हम सूर्य की अग्नि पूरी चरम सीमा पे होती है, उसी समय हमारे डाइजेस्टिव फायर भी पूरी तरह से हाई होती है 12 से 2 के बीच, उस समय हमें अपना जो लंच है वो करना ही चाहिए, और वो लंच हमारा मेन भोजन होना चाहिए, जो कि हम लोग आज की डेट में नहीं करते। उसके बाद कोशिश करें कि अगर खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की लाइट वॉक हो सके लंच और डिनर के बाद। ब्रेकफास्ट के टाइम तो मुश्किल है, जरूरी नहीं है, और ब्रेकफास्ट मोस्टली हम बहुत लाइट करते हैं, और बहुत लेट भोजन नहीं करना चाहिए। रात का भोजन जो है उसको हमें 7 बजे तक कर लेना चाहिए, चाहे हम रात को 10 बजे सोते हैं या 11 बजे भी सोते हैं, क्योंकि 7-8 बजे तक भोजन अगर नहीं करते तो उसके बाद हमारा दिमाग रात को उस भोजन को पचाने में लगा हुआ है, जबकि हमें ब्रेन को रेस्ट करने के लिए नींद लेनी होती है। तो ब्रेन रेस्ट नहीं करता तो ब्रेन सुबह अपनी बॉडी के फंक्शन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता सारे ऑर्गन्स को। तो सबसे पहले भोजन, और दूसरे नंबर पे टाइम पर सोना, ये एक बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, सिर्फ वजन की बात नहीं है, ओवरऑल भी अगर हमने स्वस्थ रखना है, तो हमें टाइम पर सोना, नियमित भोजन खाना और प्राणायाम का ध्यान ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम और मेडिटेशन ये हमें स्ट्रेस से मुक्त करता है। जब तक हम स्ट्रेस से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारी हमारा दिमाग जो है हमारे ऑर्गन के साथ जुड़ के उनको संतुलन काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे पाता, और फिर हमारे जो ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, ये सब ऑटो मोड में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो रेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट होल बॉडी। इसलिए ये 3 नियम, नियमित रूप पे भोजन करना, रात को टाइम पे भोजन करना, और रात को समय पे सोना, और सुबह प्राणायाम, ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो हमारी जो है मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली संतुलित होना शुरू हो जाता है।
और जो लोग ऑफिस में बैठ कर दिन भर काम करते हैं या जो लोग घर से काम करते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो लोग घर पे बैठ के काम करते हैं, पहले मैं उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब से ये शुरू हुआ है तो घर पे बैठ के काम करने वाले लोगों ने इसको एक प्रिविलेज लेने के बजाय इसको एक कर्ज कर दिया कि मजे से उठो, लेट उठो। वो अगर आप पूरा चार्ट बना के देखें तो कम से कम हर बंदा सुबह सुबह ही 1 घंटा बचा रहा है अपना, जो उसको सुबह उठ के तैयार होके ऑफिस जाने को लगता था, फिर भी उस एक 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 घंटे को हमने उसका सदुपयोग करने के बजाय उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं कि हम और भी लेट उठते हैं। वो 1 घंटा हमें मिला, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें हम प्राणायाम कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ी वॉक कर सकते हैं, सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधे घंटे का हमें लंच ब्रेक है, उसमें हम जैसे ऑफिस कल्चर में हम बाहर जाके थोड़ा वॉक करके आते हैं, तो हम बाहर जाएं और थोड़ा वॉक करके आएं। वो इसी तरह से जो लोग ऑफिस में जाते हैं तो उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग लंच साथ में पैक करके नहीं लेके जाते, और हम बोलते हैं कि शाम को आके खाएंगे। जब हम शाम को आके खाते हैं तो शाम को आके लेट हो जाते हैं, थके होते हैं, चाय पीते रेस्ट करते करते डिनर का टाइम और भी लेट हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमारा मेन भोजन जो है वो लंच होना चाहिए, तो उसमें एक मैंने और भी मैंने एक वाक्य बोला था कि अभी आज की दुनिया में सब कुछ पॉइजनस है, हमने ये देखना है कि इसमें कम पॉइजन है। तो अगर हम वो ढूंढते हैं तो हमें रात का बना भोजन अगर हम लंच के लिए पैक करके ले जाते हैं वो टेक अवे खाने से बहुत अच्छा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो आपके घर में बना है आपको पता है, आपने उत्तम क्वालिटी का सारा कुछ मटेरियल यूज किया है, तो आप एक आराम से बैठ के 5-10 मिनट में अपना भोजन खाओ, बाकी के 15-20 मिनट थोड़ा बहुत बाहर टहल लो, ताकि जो आपका भोजन थोड़ा आपको पच भी जाए और आपकी थोड़ी बॉडी की एक्सरसाइज भी होगी। अगर सारा दिन ऑफिस में बैठे रहे हो तो 15-20 मिनट आपने अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन कर लिया, और शाम को घर पे आके अपना आफ्टरनून टी के लिए एक आध फ्रूट जरूर लेके जाएं। आते आते घर में आफ्टरनून टी का फ्रूट खाते हुए और घर पे आके हल्का सा भोजन करें और टाइम पर सो जाएं।
और महिलाओं को वजन कम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए आप क्या सलाह देंगे?
नियम तो महिला हो मर्द हो दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में पीरियड्स आते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से महिलाओं के लिए जो शरीर में जो अभ्यंग बॉडी को ऑयल मसाज करने की बहुत ज़रूरत है, हफ्ते में कम से कम 1 दिन सारे शरीर पे और सिर पे तेल की मालिश अगर खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए प्राणायाम बहुत ही जरूरी होता है, जब पर्टिकुलरली जब हमारी पीरियड्स के दिनों में, वो उसके साथ हम प्राणायाम, वो महिलाओं के लिए प्राणायाम हमें हर रोज करना ही करना है। वैसे तो हम नियम ये होना चाहिए हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए प्राणायाम का महत्व बहुत ही अच्छा है। पर्टिकुलरली अनुलोम विलोम, जो जिसको कि हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं, अलग अलग कमर्शलाइजेशन वे से अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखे हैं, लेकिन अल्टरनेट ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, ये महिलाओं के लिए एक जर्नल तौर पे बहुत ही अच्छा मेडिटेशन का माध्यम है।
और अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरी तरफ से संदेश ये है कि अपनी जीवन शैली को उत्तम रखें और अपने आप को इतना बढ़िया रखें कि अब कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, अपने मन में भाव जो है दया का रखें और खुश रहना सीखें। जब हम खुश रहना सीखते हैं तो उसके साथ अपने आप ही दिमाग से संदेश आता है, अगले वाला जो कर्म करते हैं, दिनचर्या भी करते हैं, वो अच्छी वाली करेंगे। अगर हम गुस्से में हैं तो हम सारे के सारे डिसीजन गलत लेंगे, हमारा भोजन भी गलत होगा, हमारी दिनचर्या भी गलत होगी। तो हमें यही लर्न करना चाहिए कि सुबह उठते ही शांति से उठ के बिना टेलीफोन के अपना दिन शुरू करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जब हम टेलीफोन को सुबह उठते ही अलार्म टेलीफोन से चेक करते हैं तो फिर नोटिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा एक सुझाव है, अब हर घर में टेबल क्लॉक होना चाहिए जिसके ऊपर हम अलार्म लगाएं, और फोन आपसे दूर होना चाहिए। आप टेबल क्लॉक के अलार्म से उठो और उसके बाद अपनी दिनचर्या गर्म पानी पी के और उसके समय के हिसाब से, जिसके पास समय है वो वॉक करने चाहे, जिसके पास समय है वो कसरत करे, जिसके पास समय है वो प्राणायाम करे, और उसके बाद अपने सारे दिन की शुरुआत करें, तो आपको किसी तरह की कोई और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
डॉक्टर नवीन शुक्ला जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी थैंक यू शशि जी, धन्यवाद।
इस अंश में दी गई जानकारी और सलाह सामान्य है, अपनी विशेष स्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। साथ ही इस साक्षात्कार में प्रस्तुत विचार व्यक्ति विशेष के निजी हैं। SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत। साथ ही आपको बता दूं कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेटर एजेंसी AHPRA के साथ पंजीकृत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेद को एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी माना जाता है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।